जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्मिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कथा हिंदी में है, तो मुझसे निवेदन किया गया था कि मैं उद्धव गीता के ऊपर आज कुछ प्रवचन दूं। अवश्य उद्धव गीता के संदर्भ में ही मैं कुछ कहूँगा, परंतु उद्धव गीता के 23 अध्याय हैं 11वें स्कंद में, तो इसलिए एक प्रवचन में वो भी एक घंटे के अंदर 50 मिनट के अंदर इसकी अच्छी तरह से चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए आज मैं उद्धव गीता के बारे में जहाँ तक वो अध्याय हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, इसकी जो एक पृष्ठभूमि है वो मैं दूंगा, इसका एक जो इतिहास है संक्षेप में उसको कहने का प्रयास करूंगा, इसका महत्व क्या है ये कुछ बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए जो वास्तविक शिक्षण है जो भगवान कृष्ण उद्धव जी को देते हैं उसकी चर्चा शायद हम नहीं कर पाएंगे आज, ठीक है। तो केवल एक इतिहास और पृष्ठभूमि आज हम देंगे उद्धव गीता के बारे में। अवश्य आप सबने उद्धव गीता का नाम तो सुना ही है, वैष्णव समाज में ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। वैसे बहुत सारे गीत हैं वैदिक साहित्य में और विशेष करके भक्ति साहित्य में, और सर्वप्रथम जो नाम आता है वो है भगवद गीता। ये भी एक गीत है, गीत इस दृष्टि से कि ये सारे जितने भी गीत हैं शास्त्रों में जो दिए गए हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए हैं, बहुत ही मधुर भक्ति से भरे हुए हैं, और इसलिए क्योंकि इनमें बहुत मिठास है और इनकी जो रचना है इतने काव्यात्मक ढंग से भी की हुई है, इतना भाव इसमें है साथ साथ, इसलिए इनको गीत कहा जाता है, जिसमें बहुत गहरा ज्ञान भी है, गहरी भक्ति भी है, एक बहुत ऐसे विशेष एक प्रस्तुतिकरण है आध्यात्मिक जीवन का, जिसको कि संगीतमय ढंग से भी कहा जा सकता है, इसलिए इसको गीत कहते हैं। जैसे हम भगवद गीता के श्लोकों का पठन जब करते हैं ना, तो हम कैसे एक ताल में बोलते हैं, कभी एक किसी मधुरता से हम बोलते हैं, जैसे देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस तरह से, तो ये गीत के समान है। तो ऐसे भगवद गीता तो सबसे प्रसिद्ध गीत है, परंतु अन्य जो विशेष करके भक्ति के गीत हैं उनमें श्रीमद् भागवत में सारे प्रसिद्ध गीत तो हैं ही, जैसे कि भागवत के चौथे स्कंद में भगवान शिव जी जब भगवान संकर्षण या विष्णु का गुणगान करते हैं तो उसे रुद्र गीत कहते हैं, और शिव जी ये सिखलाते हैं प्रचेताओं को, जो 10 प्रचेता होते हैं। फिर 12वें स्कंद में हम देखते हैं भूमि गीत, 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में है। उसी प्रकार से भागवत के 11वें स्कंद में महाराज निमि को उपदेश देते हैं नव योगेंद्र, तो इस संवाद को जायन्ते या गीत कहा गया है। 10वें स्कंद में जहाँ तक वृंदावन का संबंध है तो इसमें गीत पंचकम है, 5 बहुत ही प्रसिद्ध गीत हैं जो कृष्ण भक्तों को बहुत प्रिय हैं। वेणु गीत 21वें अध्याय में, अब 10वें स्कंद की बात कर रहे हैं, प्रणय गीत 29वें अध्याय में, गोपी गीत 31वें अध्याय में, युगल गीत या गोपिका गीत जो 35वां अध्याय है उसमें, और भ्रमर गीत जो 47वें अध्याय में है। तो ये गीत पंचकम, तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित, गीत गोविंद भी है जो जगन्नाथ के भक्तों को बहुत प्रिय है, भगवान जगन्नाथ को स्वयं बहुत प्रिय है ये गीत, प्रतिदिन रात को विश्राम के पहले जगन्नाथ जी को ये सुनाया जाता है, उनके शरीर दिव्य शरीर के ऊपर जो चादर ओढ़ा जाता है उसमें भी गीत गोविंद के तरह तरह की पंक्तियाँ हैं, उस कपड़े के ऊपर बुनाई के रूप में है वहाँ पर है। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं, तो उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है उद्धव गीत, उद्धव गीता। उद्धव गीता भी श्रीमद् भागवत के ग्यारहवें स्कंध में हम प्राप्त करते हैं, सातवें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक। तो कुल मिलाकर 23 अध्याय 1000 श्लोकों से अतिरिक्त से ज़्यादा से अधिक इसमें श्लोक हैं। याद रखिए कि भगवद गीता में 700 हैं और यहाँ उद्धव गीता में 1000 से अधिक श्लोक हैं। तो उद्धव गीता का प्रारंभ तो वास्तव में 11वें स्कंद के 6 अध्याय से होता है, जब उद्धव जी कुछ प्रश्न पूछते हैं या कुछ बातें कहते हैं श्री कृष्ण से, और फिर श्री कृष्ण अपना उत्तर देते हैं 7वें स्कंद से 29वें अध्याय तक। तो ये श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में संवाद है। और उद्धव गीत के भीतर भी अनेक गीत हैं, जैसे कि अवंती ब्राह्मण का गीत है, या पिंगला गीत है, आइल गीत है। तो इस प्रकार से बहुत सारे गीत हम देखते हैं। अब ये रही गीत की बात, कि बहुत सारे गीत आदि हैं। अब उद्धव के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण भक्त भी नहीं है। वो वृंदावन के बाहर जितने भी भक्त हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वैसे संपूर्ण सृष्टि में, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में जितने भी सारे भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं वृंदावन के निवासी। हाँ, उनमें से भी गोपियाँ सबसे श्रेष्ठ हैं, उन गोपियों में से भी श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो व्रजवासियों के बाद सनातन गोस्वामी के अनुसार बृहद भागवतामृत में उद्धव जी का उल्लेख होता है। उद्धव जी के बाद में फिर हैं यदुवंशी, अन्य यदुवंशी, फिर पांडव, हनुमान, प्रहलाद, शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र। उतरते हुए क्रम में ये सारे भक्त माने जाते हैं इस श्रृंखला में, ऐसे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं। ये एक अनुक्रम है, समझ लीजिए। तो उद्धव जी वृंदावन के बाहर के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, तो वृष्णि वंश में सबसे उन्नत व्यक्ति हैं वो। उनके पिता का नाम था देवभाग, जो कि वसुदेव जी के भाई थे। इस प्रकार से उद्धव श्री कृष्ण के पैतृक चचेरे भाई हो गए, और बृहस्पति के शिष्य थे, तो बहुत ही बड़े विद्वान थे। बृहस्पति कौन है? वो तो देवताओं के गुरु हैं। और दिखने में भी, व्यवहार और वैचित्र में भी श्री कृष्ण से इतने मिलते जुलते थे कि अक्सर लोग गलती करते थे, उद्धव को देखकर समझते थे कि ये श्री कृष्ण आ गए हैं। जब उद्धव जी वृंदावन पहुँचे पहली बार, तो गोपियों ने सोचा कि अरे ये तो कृष्ण आ गए वापस। फिर उन्हें बाद में पता चला कि ये कृष्ण नहीं हैं, कोई और हैं। तो भागवत में कहा गया है कि बुद्धि सप्तमः, बहुत ही बुद्धिमान उद्धव जी हैं और थे, और न्याय आदि में बहुत ही प्रवीण, निर्णय बहुत ही अच्छे ढंग से ले सकते थे। श्री कृष्ण के एक महत्वपूर्ण सलाहकार थे, उनके एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी थे। वैसे महाभारत में भी उद्धव जी का उल्लेख अवश्य आता है जगह जगह पर, विशेष रूप से जब शाल्व ने, जो असुर था, उसने द्वारका के ऊपर आक्रमण किया था, तो जो उस समय कृष्ण नहीं थे द्वारका में, तो यदुवंशियों ने बहुत शूरवीरता से द्वारका की रक्षा की और शाल्व को हरा दिया। उस समय उद्धव जी सामने थे युद्ध में, तो उद्धव जी के कारण शाल्व को रोका जा पाया। तो इस तरह से जब महाभारत में भी जब वर्णन आता है कि श्री कृष्ण का तिरुभाव जब हुआ, तो उस समय भी उद्धव जी उनके पास में थे। परंतु वास्तव में उद्धव जी की भूमिका महाभारत में इतनी विशिष्ट नहीं है। उनकी वास्तविक महिमा दिखाई पड़ती है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में ही व्यासदेव जी या शुकदेव गोस्वामी हमें उद्धव जी से परिचित कराते हैं। जब विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर तो क्या, उनको निकाल देते हैं ना दुर्योधन। दुर्योधन कहते हैं कि यहाँ अपने सांस को साथ लेकर चले जाओ बस, और कोई भी चीज़ साथ में नहीं ले जा सकते। तो ऐसा अपमान नहीं सहन हुआ विदुर जी को, और वो निकल पड़े वहाँ पर। विदुर, बलराम ऐसे थे जिन्होंने कि युद्ध में भाग नहीं लिया, तो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। तो ऐसे भ्रमण करते करते वृंदावन के पास उद्धव जी से मिले, ऐसे श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में शुकदेव जी बताते हैं। तो वहाँ पर तीन अध्यायों में, दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा अध्याय, इन तीनों अध्यायों में उद्धव जी और विदुर जी का संवाद है। बहुत ही मधुर और महत्वपूर्ण, भक्ति से भरा हुआ संवाद है। हम सबको पढ़ना चाहिए। आपसे निवेदन करते हैं कि आप तीसरे स्कंद की ये तीन अध्याय अवश्य पढ़ें। सारे श्रीमद् भागवत का या कृष्ण लीला का सार जो है वो इन तीन अध्यायों में हम पाएंगे। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी उद्धव जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि कितने महान भक्त थे वो। वैसे उद्धव चरित्र के बारे में और विस्तार में चर्चा करने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है, परंतु संक्षेप में ही इतना कहना उचित है कि उद्धव जी इतने महान भक्त थे कि वो बाह्य दुनिया को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण के इतने निकट थे कि उनके बिना रहना उद्धव जी के लिए संभव नहीं था, वो सोच भी नहीं सकते थे। और क्योंकि वो इतने निकट थे श्री कृष्ण के, और इतने महान भक्त थे और इतने बुद्धिमान थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनको चुना ब्रजवासियों को के पास जाकर उनको सांत्वना देने के लिए। अभी हम सबको पता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर वृंदावन चले आए तो ब्रजवासी जो हैं वो विरह के दुख के सागर में डूब रहे थे। तो श्री कृष्ण को तो ये पता था, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि कैसे मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्तों को सांत्वना दी जाए, कौन मेरा प्रतिनिधित्व कर पाएगा, कौन जाके उन दो अच्छे बातें उनको सुनाएगा। तो फिर उन्होंने उद्धव जी को चुना। और ये 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में ये वर्णन आता है, उद्धव जी की वृंदावन की यात्रा। और 47वां जो अध्याय है वो है भ्रमर गीत, जिसके बारे में अभी भी मैंने उल्लेख किया। उद्धव वहाँ जाके चकाचौंध रह जाते हैं। वैसे उद्धव जी अपने आप ही शुद्ध भक्त हैं, वृष्णि वंश में सबसे उन्नत भक्त हैं, परंतु जब वृंदावन आए तो उन्होंने जो देखा अपने आँखों के सामने, जिस श्रेणी की भक्ति उन्होंने ब्रजवासियों में देखा, विशेष रूप से गोपियों के चरित्र में देखा, उनको वो तो आश्चर्यचकित रह गए। और इसलिए कई महीनों तक वो वृंदावन में रहे। उद्धव जी वैसे उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, उनको उपदेश देने के लिए आए थे, कुछ बताने के लिए आए थे, ज्ञान देने के लिए आए थे, परंतु उद्धव जी ने सोचा अरे ये तो बात उल्टी हो गई, अब हुआ ये कि हम इन गांव में रहने वाले सीधे साधे भोले भाले ब्रजवासियों से कितना हम सीख रहे हैं। वास्तव में ऐसे भक्त कहीं नहीं हो सकते सारे संपूर्ण सृष्टि में। तो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को चुना। और जब मथुरा में और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे, उस समय भी समय समय पर उद्धव का नाम, उद्धव जी का नाम तो आता ही है, क्योंकि श्री कृष्ण सलाह तो लेते थे। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत ही है जिसमें कि उद्धव जी की वास्तविक महिमा दिखाई पड़ती है। तो अब हुआ ये कि जब उद्धव जी को ये पता चला कि श्री कृष्ण का तिरोभाव होने वाला है, तो बड़े विचलित हो गए, इसलिए श्री कृष्ण के पास आए। इसके पहले कि हम इस इतिहास की चर्चा संक्षेप में करें, मैं उद्धव गीता और भगवद गीता इन दोनों ग्रंथों के बीच में, इन दोनों गीतों के बीच के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि भगवद गीता के बाद जितने भी भक्ति के गीत हैं जो भक्ति शास्त्रों में श्रीमद् भागवत या पुराण आदि में हों, वो है उद्धव गीत। इसलिए इन दोनों के संबंध में, दोनों के बारे में चर्चा करना थोड़ा मेरे ख्याल से उचित होगा। उसके बाद में हम थोड़ी इतिहास की चर्चा करते हैं कि उद्धव गीता कैसे बोली गई, क्यों बोली गई, किस परिस्थिति में बोली गई। वैसे भगवद गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने कही अपने प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन को। अर्जुन के बारे में क्या कहना, वो तो एक नित्य पार्षद हैं श्री कृष्ण के, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी सारे पांडव, द्रौपदी, कुंती महारानी, ये सब श्री कृष्ण के बहुत प्रिय थे, परंतु इन सब में से अर्जुन सबसे अधिक प्रिय थे। तो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, उधर उद्धव गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र और सलाहकार और भक्त उद्धव जी से कही। उद्धव जी भी उनके एक बहुत निकट के पार्षद हैं। दूसरी बात, दोनों भगवद गीता या और उद्धव गीता दोनों ही व्यासदेव जी के संपादन में हम पाते हैं। महाभारत हो या श्रीमद् भागवत हो, दोनों ही व्यासदेव द्वारा विरचित हैं। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जैसे मैंने संक्षेप में कहा था, और परंतु महाभारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग एक ग्रंथ के रूप में बहुत विख्यात है भगवद गीता। उधर उद्धव गीता जो है ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में पाया जाता है, 7वें अध्याय से 29वें अध्याय तक, लगभग 1000 श्लोक, 1000 से थोड़े अधिक। तो यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है या गीत है, फिर भी जन साधारण में इस उद्धव गीता की जानकारी इतनी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए, जब हम सब कृष्ण भक्त हैं, कि उद्धव गीता के बारे में भी हम सब जगह चर्चा करें, ताकि लोग परिचित हो जाएं इस महत्वपूर्ण गीत से। तीसरी बात है कि भगवद गीता एक युद्ध भूमि पर बोली गई थी, कुरुक्षेत्र धाम में। उधर उद्धव गीता भी एक तीर्थ स्थान में कहा गया था, वो है द्वारका में, और वो एक एकांत स्थान में कहा गया था ये संदेश, और उस समय केवल श्री कृष्ण और उद्धव थे। तो भगवद गीता के समय सारे जो कौरव सेना थी वहाँ पर, पांडव सेना थी, हजार लाखों लाखों की संख्या में लोग खड़े रहे जब ये संवाद चल रहा था श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, परंतु उद्धव गीता के समय ये केवल दो थे। मैत्रेय मुनि आए बाद में भी थोड़े उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी को भी दिए। तो चौथी बात, भगवद गीता में हम ये देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने कर्तव्यों को त्याग के विरक्त जीवन स्वीकार करना चाहते थे। वो अपने रिश्तेदारों की हत्या नहीं करना चाहते थे युद्ध में। वो युद्ध भूमि को छोड़कर हिमालय में चले जाना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने उनको थोड़ा डांटा। अभी गुरु का स्वरूप धारण किया श्री कृष्ण ने। वैसे तो श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, परंतु अब जब अर्जुन भ्रमित हो रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण का शरण ग्रहण किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता इत्यादि। तो थोड़ा डांट कर, प्रेम का डांट था, थोड़ा डांट कर फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नहीं, ये बाह्य वैराग्य तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए वैराग्य आंतरिक होना चाहिए और तुम्हें यहाँ अपने कर्तव्यों को वर्णाश्रम के अनुसार करना चाहिए। तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। जब अन्याय होता है तो अन्याय के विरोध में युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है और तुम्हारा स्वभाव भी इस प्रकार का है। इसलिए जब आज तुम यदि युद्ध से भाग भी जाओगे, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें बाध्य करेगा कल नहीं तो परसों पुनः युद्ध करने के लिए। इसलिए बाह्य वैराग्य त्याग दो और यहाँ पर रह के युद्ध करो, मेरे आदेश के अनुसार युद्ध करो। तो यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं बाह्य विरक्ति का जीवन नहीं अपनाना। उधर उद्धव जी को जब श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने बाह्य वैराग्य के रास्ते के आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया, आदेश दिया, तुम निरासक्त हो जाओ हे अर्जुन, हे उद्धव, अब सब कुछ छोड़ दो, तुम अपने सगे संबंधियों को भूल जाओ, निरासक्त हो जाओ और केवल अब इस आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ते रहो। तो उद्धव वास्तव में श्री कृष्ण के साथ भगवान के धाम में जाना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अब समय नहीं है, तुम्हारे लिए सेवा है, तुम्हें बद्रिकाश्रम जाना है और बद्रिकाश्रम जाके जो मैं तुम्हें उपदेश दूंगा भक्ति के बारे में, वो तुम्हें उन्हें देना है ताकि वो फिर सब जगह जाके इसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये देखिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन बाह्य वैराग्य का जीवन स्वीकार करना चाहते थे, उनको मना किया, परंतु उद्धव को श्री कृष्ण ने कहा कि बाह्य वैराग्य का जीवन स्वीकार करो और साथ साथ दोनों अर्जुन और उद्धव को उनकी निजी इच्छाओं को त्यागने के लिए कहा और श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए कहा। अर्थात दोनों भगवद गीता में और उद्धव गीता में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण प्रधानता देते हैं शरणागति के ऊपर, कि अपने विचारधाराओं को, अपने तरह तरह के जो मत होते हैं, राय होते हैं, इच्छाएं होते हैं, उनको त्याग कर हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं को स्वीकार करना चाहिए। जो भगवान हमसे चाहते हैं वही हमें करना चाहिए। भगवान को तो भले नहीं जान सकते, परंतु भगवान के प्रतिनिधि को तो हम जानते हैं। भगवान के कई प्रतिनिधि हैं तो उनके प्रतिनिधियों के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। तो वास्तव में दोनों भगवद गीता और उद्धव गीता में अंतिम उपदेश यही है कि मेरे शरण में आओ, कृष्ण कहते हैं, मेरी सेवा करो, शुद्ध भक्त बनो और फिर इस भक्ति का प्रचार सब जगह करो। तो दोनों भगवद गीता और उद्धव गीता के द्वारा श्री कृष्ण इस भक्ति का प्रचार करना चाहते थे संपूर्ण सृष्टि को। जब भगवद गीता की बात आई तो स्वयं श्री कृष्ण प्रवक्ता बन गए, परंतु उद्धव गीता में वो चाहते थे कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा उद्धव, तुम जाके ऋषि मुनियों को जो बद्रिकाश्रम में रहते हैं उनको सुनाओ और फिर ताकि वो आगे चल के सब जगह प्रचार करें। तो हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ये जो प्रचार की इच्छा है कितनी तीव्र है। वो चाहते हैं कि यहाँ के बद्ध जीवों तक उनका संदेश पहुँच जाए। तो चाहे अर्जुन हो चाहे उद्धव हो, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा यही थी, शरणागति, भक्ति, प्रचार। तो इस प्रकार से दोनों भगवद गीता और उद्धव गीता में हम समानता भी देखते हैं, थोड़ा सा अंतर भी देखते हैं बाह्य वैराग्य के रास्ते में प्रेरित करने के संबंध में। फिर पांचवी बात, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई विषयों के ऊपर ज्ञान दिया, धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, वैराग्य के बारे में और वर्णाश्रम के बारे में, जो कर्तव्य होते हैं, कर्मकांड के बारे में, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, और अंत में निष्कर्ष क्या निकला, शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज और मनमना भव मत भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु। तो शरणागति और शुद्ध भक्ति, ये दोनों बातें भगवद गीता के निष्कर्ष हैं। यद्यपि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक विषयों के ऊपर व्याख्या की, फिर भी अंतिम जो निष्कर्ष था वो है शरणागति और भक्ति। ठीक उसी प्रकार से उद्धव गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने विविध विषयों के ऊपर चर्चा की, जिन विषयों का उल्लेख भगवद गीता में होता है उनके ऊपर अवश्य किया, और ऐसे भी कई अन्य विषय थे जिनके ऊपर उन्होंने व्याख्या की। दोनों उद्धव गीता और भगवद गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जो एक समान हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ भगवद गीता समाप्त होती है वहां से उद्धव गीता प्रारंभ होती है। एक जगह श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से उद्धव गीता इसलिए कही थी क्योंकि वो भगवद गीता में दिए गए दिव्य ज्ञान को संपूर्ण करना चाहते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवद गीता का ज्ञान अपूर्ण है। भगवद गीता में केवल 700 श्लोक है ना, तो 700 श्लोकों में सारी बातें इतने विस्तार में तो नहीं कही जा सकती। तो इसलिए श्री कृष्ण ने संक्षिप्त रूप में ये ज्ञान दिया था। देखिए भगवद गीता में ही हम सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहुर मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, कि मैंने ये गीता का ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव ने अपने पुत्र को दिया, मनु मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरागत ये ज्ञान आ रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि भगवद गीता कई प्रकार के हैं। जिस गीता को हम भगवद गीता कहते हैं वो एक भगवद गीता है। जिस भगवद गीता को भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को दी थी उसका रूप क्या है, उसमें कितने श्लोक थे, ये सब हमें पता नहीं। बहुत लंबी गीता कही होगी भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव से। सूर्यदेव इतने बुद्धिमान हैं, बहुत विद्वान हैं सूर्यदेव, लेकिन अर्जुन के लिए इतना समय नहीं था ना, वो युद्ध भूमि में खड़े थे, युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, तो इतने विस्तार में भी कुछ बोला नहीं जा सकता था। इसलिए संक्षेप में ही भगवान कृष्ण को कहना था। तो यद्यपि भगवद गीता का ज्ञान पूर्ण है फिर भी संक्षिप्त रूप में है। इसलिए भगवान कृष्ण अब चाहते थे कि इसी ज्ञान को थोड़े विस्तार में कहा जाए। ये श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश होने के कारण भगवान चाहते थे कि जितना विस्तार में हो सके मैं इतना बताकर जाऊं। वैसे तो मेरे शास्त्र हैं ही, बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद हैं इत्यादि, और मेरे इतने सारे शुद्ध भक्त हैं जो अपने ग्रंथों की रचना करेंगे मेरे शिक्षणों के आधार पर। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ इस बात को कहते हैं कि भगवद गीता के ज्ञान को संपूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उद्धव गीता सुनाई। और आगे चल के प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते अपने आंदोलन को, जिस इच्छा से वो यहाँ प्रकट हुए थे, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए और ये सारे दिव्य ज्ञान को, जो कि वो भगवद गीता में नहीं बोल पाए थे, उस ज्ञान को भी संसार के सामने रखने हेतु उन्होंने उद्धव जी को ये उद्धव गीता सुनाई। दूसरे शब्दों में, वैसे उद्धव गीता और भगवद गीता ज्ञान एक ही है, फर्क इतना है कि उद्धव गीता में वही ज्ञान थोड़े विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, थोड़े गहराई से ज़्यादा प्रस्तुत किया गया है, और थोड़े और भी विषय हैं, और जैसे कि अर्चा विग्रह की सेवा हो, भक्ति योग के बारे में, सब कई ऐसे विषय हैं जिनकी चर्चा इतनी गहराई से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं कर पाए। इस तरह से हम उद्धव गीता और भगवद गीता के बीच में ये संबंध देख सकते हैं। तो हमारे लिए ये समझना बहुत आवश्यक है, इन दोनों ग्रंथों के बीच में संबंध। इसलिए जब आज का प्रवचन समाप्त होगा, आज से ही आप उद्धव गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। परंतु यदि आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी हो तो वो पहले पढ़ लीजिए। आशा करते हैं कि सबने भगवद गीता पूरी तरह से पढ़ ली होगी। यदि नहीं पढ़ी है तो कृपया आप पढ़ लीजिए और फिर आप उद्धव गीता पढ़ लीजिए। फिर आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें एक समान हैं इनमें, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था, उद्धव गीता और भगवद गीता के बीच में संबंध। अब संक्षेप में, इसकी उद्धव गीता के पीछे जो इतिहास है मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो 11वें स्कंद में 6ठे अध्याय में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी एक बार अन्य देवताओं को साथ में लेकर द्वारका में आए। वो श्री कृष्ण के सुंदर मानवीय रूप का दर्शन करना चाहते थे। वैसे श्री कृष्ण तो मनुष्य है नहीं, वो तो भगवान ही हैं। मनुष्य भगवान की तरह दिखते हैं, ऐसा नहीं कि हमने बैठ के कल्पना कर ली कि भगवान का रूप भी हमारी तरह होना चाहिए इसलिए काल्पनिक रूप है भगवान का, ऐसे कई लोग तर्क करते हैं, परंतु ये गलत है। तो जब मनुष्य समाज में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, तो इनका ये मूल रूप है, तो देवगण जो उनका दर्शन करना चाहते थे तो वो सब आए वहाँ पर। परंतु उनका उद्देश्य और एक भी था। आपको याद होगा कि दशम स्कंद के प्रारंभ में ही सारे देवगण जो हैं वो क्षीर सागर के तट पर जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ में, और बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करते हैं भगवान के चरण कमलों में। क्या, क्यों प्रार्थना करते हैं? पृथ्वी माता उनके पास आई थी ब्रह्मा जी के पास, त्राही त्राही मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, क्योंकि अभी मेरे ऊपर, अभी मेरे लोक में इतने सारे दुष्ट लोग उपस्थित हैं और इतने पाप कर रहे हैं कि इनका भार सहन करना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए आप कोई व्यवस्था कीजिए, कोई उपाय निकालिए। तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने सोचा कि मेरे बस की बात नहीं है ये, तो उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं भगवान के पास। तो सारे क्षीर सागर में चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने पुरुष सूक्त प्रार्थना आदि की। ब्रह्मा जी के हृदय से भगवान ने उनको उपदेश दिया या संदेश दिया कि आप सब विचलित नहीं होना, मैं शीघ्र ही प्रकट हो जाऊंगा यदुकुल में। तो आप सब भी वहाँ पर यदुकुल के जो महिला हैं उनके गर्भ से आप सब भी प्रकट हो जाना। तो ऐसे सांत्वना देकर भगवान विष्णु जो हैं, जो गर्भोदकशायी विष्णु हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु हैं, क्षीर उदकशायी दूध के सागर में शयन करने वाले क्षीरोदकशायी विष्णु ने उन सबको सांत्वना दी और सारे देवगण अपने अपने लोकों में चले गए संतुष्ट होकर कि अब भगवान प्रकट होंगे और पुनः धर्म की स्थापना पृथ्वी लोक के ऊपर होगी। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो बताया ही है कि वो परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, फिर दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, ये सारी बातें हम सुन चुके हैं कई बार भगवद गीता में। तो ये उद्देश्य था उनका। तो श्री कृष्ण अब आए। श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद लगभग अब 125 वर्ष बीत चुके थे। तो इन 125 वर्षों में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी चीजें की संपन्न कर ली थी। उन्होंने भगवद गीता को उपदेश दिया था श्री कृष्ण अर्जुन को और अन्यों को भी बहुत कुछ कहा था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं का प्रदर्शन किया था जिनके बारे में श्रवण कीर्तन करने से कलयुग के पतित से पतित जीवों का भी उद्धार हो सकता था। तो ये श्री कृष्ण के अवतार लेने के पीछे मूल कारण था कि वो ऐसे लीलाओं को प्रदर्शित करें जिनके बारे में देखकर, सुनकर, स्मरण करके, बोलकर हम सब शुद्ध हो जाएं, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम आस्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत। शुकदेव गोस्वामी भागवत के दशम स्कंद में कहते हैं कि भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने आके यहाँ पर तरह तरह के सुंदर लीलाएं प्रकट की जिनके बारे में सुनने से हमारा बेड़ा पार हो जाता है, हम शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई थी, ये परम कल्याण का कार्य है। तो अब 100 हमेशा के लिए तो भगवान यहाँ नहीं रह सकते, ये भौतिक जगत है, हमेशा भगवान यहाँ रहेंगे तो फिर ये आध्यात्मिक जगत ही बन जाएगा। और भगवान को लौटना था स्वधाम, तो लौटने का समय आ गया था। तो इसलिए अब ब्रह्मदेव अन्य देवताओं के पास में आके उनके चरण कमलों में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम बहुत आभारी हैं कि हमारे प्रार्थना और निवेदन के अनुसार आप यहाँ पर प्रकट हुए, और जितने भी उद्देश्य थे, जितने भी मांगे हमारी थीं, जितने भी याचनाएं हमारी थीं, इच्छाएं थीं, वो सब आपने पूर्ण कर लीं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं को आपने प्रदर्शित कर लिया। तो अब आप ऐसी कृपा करें कि हम आपको और कष्ट नहीं देना चाहेंगे, कृपया आप स्वधाम लौट जाएं। अभी जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर प्रकट हुए थे वो उद्देश्य अभी पूर्ण हो चुके। तो ऐसे अक्सर देवतागण करते हैं। वैसे श्री राम वाल्मीकि रामायण में भी, श्री रामचंद्र के बारे में भी ऐसे ही हुआ। हाँ, जब 11,000 वर्षों तक श्री रामचंद्र ने अयोध्या के ऊपर, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर बल्कि राज्य किया, तो ब्रह्मदेव फिर आए उनके सामने, बहुत एक गोपनीय चर्चा हुई। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि जिस उद्देश्य से आप आए थे वो पूर्ण हो चुका है प्रभु, तो स्वधाम लौटने की कृपा करें। तो उसी तरह से यहाँ द्वापर के अंत में भी ब्रह्मा जी आए थे शिव जी के साथ, अन्य देवताओं के साथ। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपके विचारों से, मुझे यहाँ और पृथ्वी लोक के ऊपर रहना उचित नहीं है, अवश्य मैं अप्रकट होने की तैयारी करता हूँ, परंतु एक कार्य रह गया है, उसको संपन्न करके मैं आ जाऊँगा। तो वो कौन सा कार्य है? वो कार्य ये है कि मेरे जो प्रिय यदुवंशी हैं वो इतने आसक्त हैं मुझसे, उनके हृदय में मेरे प्रति इतनी तीव्र आसक्ति है, इतना स्नेह है कि यदि मेरा तिरोभाव हो जाए तो वो इस विरह को सहन नहीं कर पाएंगे, और ये सहन उनके लिए, ये विरह इतना असहनीय हो जाएगा उनके लिए कि वो सारे पृथ्वी लोक के ऊपर उत्पात करेंगे, तहस नहस कर डालेंगे सारे पृथ्वी का। तो इसलिए मेरे तिरुभाव के पहले मुझे ये देखना है कि मेरे प्रिय यदुवंशियों का तिरुभाव हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना की, और इसका वर्णन भी 11वें स्कंद में पाया जाता है, नारद और अन्य ऋषियों के द्वारा उन्होंने यदुवंशियों के जो राजकुमार थे उनके ऊपर श्राप दिलवाया, और एक बहुत ही जबरदस्त खतरनाक श्राप था वो, कि अब सबकी सबका अंत हो जाएगा। तो जब वैसे वास्तव में ये भगवान की ही योजना थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि इस श्राप के फलस्वरूप आगे और घटनाएं कोई हों ऐसे जिसके द्वारा यदुवंशी परस्पर आपस में ही लड़ के एक दूसरे की हत्या कर लें और फिर वो अपने अपने स्थानों में पुनः चले जाएं। क्योंकि वो चाहते थे, श्री कृष्ण चाहते थे कि यदुवंशियों का तिरुभाव पहले हो जाए। तो जब ऐसे श्राप की घटना हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में तो विराजमान है ही, तो उन्होंने राजकुमारों को ऐसे प्रेरित किया कि उन्होंने ऐसे कोई अपमानजनक कार्य किए, अपमानजनक बातें कहीं साधुओं के प्रति, और साधुओं के हृदय में बैठे हैं भगवान, उन्होंने भी ऐसे श्राप दिलवाया राजकुमारों के ऊपर या यदुवंशियों के ऊपर। तो इस तरह से जब ये घटना हो गई, श्राप देने की घटना हो गई, और देवगण भी श्री कृष्ण के पास आए थे उनकी प्रार्थना लेकर कि श्री कृष्ण पुनः स्वधाम चले जाएं, तो श्री कृष्ण ने अब यदुवंशियों को बुलाया और कहा कि देखो मेरे प्रिय यदुवंशी भक्तों, अब मैं सब जगह सर्वत्र मैं अशुभ लक्षण देख रहा हूं, और अभी थोड़े समय पहले ही साधुओं ने हमारे वंश के ऊपर श्राप दिया था, तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम सबके लिए उचित है कि हम द्वारका के पास जो प्रभास क्षेत्र है, जो महत्वपूर्ण तीर्थ है, वहां पर हम सब जाएं, वहां पर हम सब प्रायश्चित करें, कुछ धार्मिक क्रियाएं करें, स्नान आदि करें, मंत्र जप तप आदि सब करें, ताकि जो हमने अपराध किए हैं उनसे हम मुक्त हो जाएं, और जो साधुओं के श्राप के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएं। तो इसलिए उन्होंने यदुवंशियों को भेज दिया कि आप प्रभास क्षेत्र चले जाएं। अब उस सभा में जहाँ के सारे यदुवंशी बैठे थे, निश्चित रूप से उद्धव भी वहाँ पर थे, तो उद्धव जी ने ये बात सुन ली। तो उद्धव जी बहुत ही बुद्धिमान थे और उनको पता चला कि ये क्या हो रहा है, और किसी को पता नहीं चला, परंतु उद्धव जी को पता चला। श्रील जीव गोस्वामी अपनी टीका में कहते हैं कि वास्तव में भगवान के धाम में कोई इस प्रकार का उत्पात नहीं हो सकता है ये संभव नहीं है। और यदि होता भी है तो फिर ये भगवान की निजी योजना के अनुसार ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो यदुवंश के जो सदस्य थे उनके आपस में परस्पर जो उनके बीच में युद्ध हुआ, ये केवल एक भगवान के माया शक्ति का प्रदर्शन था, ये एक बाह्य दिखावा था जो कि स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा सृजित था, रचित था उनकी लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और वहां पर जब उद्धव जी बैठे थे तो उन बातों को समझ रहे थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से वो सुन तो लिया, सब चुप रहे उद्धव जी, उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब सारे यदुवंशी वहां से निकल गए तो श्री कृष्ण भी वहां से निकल पड़े, किसी एकांत स्थान में गए, तो उद्धव जी भी पीछे पीछे उनके पास गए और श्री कृष्ण के सामने प्रणाम करके वो कहने लगे कि हे प्रभु, वैसे आप कोई आपके हृदय में जो इच्छा है मैं समझ गया हूं, साधु ने दी हुई श्राप का प्रतिकार करने हेतु, क्या उसका प्रायश्चित करने हेतु परिहार के रूप में आपने उनको प्रभास क्षेत्र जाने के लिए आदेश दिया है, परंतु आप तो पूरी तरह से समर्थ हैं साधुओं के श्राप को नष्ट करने के लिए, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए या उसका प्रतिकार करने के लिए आप बिल्कुल समर्थ हैं, पर आप नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी तीर्थ स्थान में जाके कोई मंत्र जप तप आदि करना, स्नान करना, ये आपके साक्षात दर्शन से ज्यादा शक्तिशाली है? आप तो यदुवंशियों के सामने हैं, आमने सामने वो आपको प्रतिदिन देखते हैं, आपसे बात करते हैं, तो इससे बड़ा और इससे बड़ी शुभ चीज कौन सी हो सकती है? जो अशुभ चीजों को नष्ट करने वाली और कौन सी चीज हो सकती है? तो श्राप नष्ट करने के लिए क्या आपका दर्शन पर्याप्त नहीं है? अवश्य है। तो जब आप इस तरह से आदेश दे रहे हैं तो फिर मैं समझता हूं कि आपका कोई उद्देश्य अन्य है, विशेष कोई उद्देश्य आपका है, और मैं समझ चुका हूं कि आप स्वधाम लौटना चाहते हैं, आप अप्रकट होना चाहते हैं यहां से, और ये मेरे लिए बिल्कुल असहनीय है, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, आपका विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, मुझे आपके साथ में आपके धाम में ले चलिए, मैं यहां पर नहीं रह पाऊंगा। वास्तव में तात्पर्य में आचार्यों ने बताया है कि जो यदुवंशी थे वो दो प्रकार के थे। एक जो नित्य सिद्ध यदुवंशी, जो कि आध्यात्मिक लोक के द्वारका से वो अवतीर्ण होकर श्री कृष्ण के साथ आए थे वो, और दूसरे जो भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु के आदेश के अनुसार देवलोक से जो प्रकट हुए थे यदुवंश में, जिन्होंने जन्म लिया था वो। तो जो यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए और जिन्होंने आपस में लड़ झगड़ के अपने आप का अंत करवाया, वो सारे देवलोक के से उतरे हुए यदुवंशी थे। तो वो अपने स्थान के बाद अपने अपने स्थान में वापस चले गए, परंतु जो श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध भक्त हैं वो रह गए द्वारका में। तो बलराम जी का भी तिरुभाव उस समय हुआ, इसका वर्णन भी शुकदेव गोस्वामी करते हैं 11वें स्कंद में। तो खैर, तो उद्धव जी ने ऐसे कहा कि आप मुझे आपके साथ में ले चले, हम आपके धाम में आपके साथ में आना चाहते हैं, मैं यहां पर नहीं रह पाऊंगा। तो उस समय श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि नहीं उद्धव, तुम्हारे लिए सेवा है मेरी। तो देखिए, हम सब भगवान की भक्ति करते हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं, हमारी बहुत इच्छाएं रहती हैं, भले वो भगवान की सेवा करने की इच्छा क्यों ना हो, हम इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, उस प्रकार के कोई भगवान की सेवा में कार्य करना चाहते हैं, परंतु यदि भगवान की इच्छा हो कि हम किसी तीसरे प्रकार से सेवा करें तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। इसे शरणागति कहते हैं। शरणागति में केवल भगवान की इच्छा की पूर्ति भक्त करता है बस। तो अब उद्धव जी से कहा श्री कृष्ण ने कि देखो, ये जो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर रहो, यहाँ पे तुम्हें खूब प्रचार करना है, अभी तुम्हारे लिए मेरे धाम में लौटने का समय नहीं आया है अभी। तो उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, जो आपकी आज्ञा है, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँ तो ठीक है, परंतु आपके तिरुभाव के पहले कृपया मुझे ऐसी कोई शक्ति दीजिए आपके अंतिम उपदेशों के माध्यम से। विशेष रूप से आप मुझे कोई ऐसे उपदेश दें जो कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे, और फिर मैं आपकी इच्छा को पूर्ण कर पाऊँगा। फिर उद्धव जी ने भी अनेक प्रश्न पूछे, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश देना प्रारंभ किया, और फिर उन्होंने एक अवधूत की कथा प्रारंभ की, जिन्होंने कहा कि मेरे 24 गुरु हैं, उन्होंने वो कथा बताना प्रारंभ किया, और इस प्रकार से उद्धव गीता शुरू हो गई, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। तो ऐसे 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से ये प्रारंभ होता है और 29वें अध्याय तक चलता है ये उपदेश, प्राय पूरे 23 अध्याय, और 29 अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि फिर श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, अब तुम आगे बढ़ो, बद्रिकाश्रम की ओर निकल पड़ो, वहाँ बहुत साधु रहते हैं, वहाँ पर उनको जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है खास करके भक्ति के बारे में, वो उनके उन्हें जाके सुनाओ, ताकि वो आगे चल के सारे दुनिया के लोगों को प्रचार प्रसार करें, अवगत कराएं सारी दुनिया को कि मेरे जीवन, उनके मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, कि उन्हें शुद्ध भक्त बनना है, मेरे अवतीर्ण होने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा सौंप दी उद्धव जी को श्री कृष्ण ने, और श्री कृष्ण उद्धव जी फिर निकल पड़े। उधर श्री कृष्ण बलराम के साथ वहाँ पर प्रभास क्षेत्र गए, और फिर बलराम जी का भी तिरुभाव हुआ, श्री कृष्ण प्रभास में रहे, और जब आगे उद्धव जी चले गए थे, उनसे रहा नहीं गया, वो चाह रहे थे कि मैं वापस जाके श्री कृष्ण को देखूं उनके तिरुभाव के पहले, तो वो वापस लौट कर आए, और एकांत स्थान में जहाँ पर श्री कृष्ण बैठे थे प्रभास क्षेत्र में, वहाँ पर उनके पास आए। उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहाँ पर थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को अंतिम उपदेश दिए, और फिर उद्धव जी वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद श्री कृष्ण का तिरुभाव वहाँ पर हुआ प्रभास क्षेत्र के बाद। हम सब तो जानते हैं कि श्री कृष्ण का आविर्भाव, श्री कृष्ण का तिरुभाव, उनके जो क्रियाकलाप हैं वो सारे दिव्य हैं। तो उद्धव जी अब आगे चल पड़े, प्रभास क्षेत्र से चलते 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 बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में फिर वो वृंदावन पहुँचे, ब्रजभूमि में, फिर यमुना के तट पर विदुर जी से मुलाकात हुई उनकी, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में है, जैसे मैंने पहले बताया था। वहाँ पे विदुर जी और उनके बीच में सुंदर सुंदर संवाद होता है, और फिर आगे विदुर जी चले जाते हैं बद्रिकाश्रम, और वहाँ पर जो उद्धव गीता का संदेश है वहाँ के साधुओं को देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक घंटा हो गया, बिल्कुल ठीक एक घंटा हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि है, इसके एक जो अंग्रेजी बैकग्राउंड है कहते हैं उद्धव गीता के लिए। अब अवश्य आप इस उद्धव गीता को पढ़िए, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हैं? हरे कृष्णा। वैसे विषय से संबंधित हो तो अच्छा है, ठीक है? अच्छा, कौन से देश में रहते हो? ओ, वेस्ट अफ्रीका में। अच्छा, वहां पे घाना नाइजीरिया से कितने दूर हो आप? ओ, तो घाना और नाइजीरिया में तो हमारे केंद्र हैं, शाखाएं हैं, भक्त हैं वहां पर। लेकिन मैं पूछताछ कर सकता हूँ। वैसे कई भक्त हैं हमारे, जो भक्ति धीर दामोदर महाराज हैं और अन्य भक्त भी हैं जो वहाँ पे उस पश्चिम अफ्रीका में प्रचार करते हैं, तो उनसे यदि संपर्क कर पाओ तो उनसे पूछ लेना कि बेनिन में कहीं कोई भक्त हैं यहाँ वहाँ, तो शायद पता चल जाए। तो वो हो या न हो, परंतु अभी इंटरनेट के द्वारा ऐसे संघ भक्तों का प्राप्त कर सकते हो। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को साथ में रखो, रोज पढ़ो, और वहाँ पे थोड़ा सा प्रचार करके भक्तों को, लोगों को भक्ति में ले आओ। इस तरह से उनके साथ मिलजुल कर छोटा सा सत्संग कर लो तो संग मिल जाएगा भक्तों का, ठीक है? तो हम सब की शुभकामनाएं हैं। वैसे थोड़े लोगों को बुलाओ जो सुनने के लिए इच्छुक हैं, और थोड़ा कीर्तन कर लो, प्रभुपाद जी के ग्रंथों से कुछ उनको उपदेश दे दो। हाँ, उनको प्रभुपाद जी के ग्रंथ दे दो, और ऐसे समय समय पर उनके साथ मिलो। हफ्ते में एक बार, दो बार, या जो जितना भी समय हो, जितने भी बार हो सके, और ऐसे धीरे धीरे से कुछ शुरू कर लो, ठीक है? अच्छा, तो ऐसे पहले ऐसे लोगों से करो जो जो सुनने के लिए तैयार हैं, या जिनको सुनाने से वहाँ कोई तकलीफ़ न हो, क्योंकि वहाँ कोई देश का कानून हो कि इनसे कुछ अन्य धर्मों की बात नहीं करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सावधान रहना। और सावधानी रख के ऐसे कोई लोग हों जो सुनने के लिए तैयार हों तो उन्हें बुलाओ अपने घर, चाहे वो अफ्रीका के लोग हों, चाहे वो भारतीय लोग हों या किसी अन्य जगह के लोग हों। तो हमारी शुभकामनाएं इस कार्य के लिए, वहां पे कर लो प्रचार, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की शुभकामना, जितने भी उपस्थित भक्त हैं यहाँ पर, हम सब मिलके शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रश्न ये है कि भक्ति करते करते क्या हमारा स्वभाव बदल सकता है या नहीं? बिल्कुल, स्वभाव बदलने ही हम आए हैं भक्ति में। हमारे स्वभाव के कारण ही तो हम बंधे हुए थे यहाँ पर इतने जन्मों से, तब इसको बदलना है इसलिए हम यहाँ पर भक्ति में आए हैं। अवश्य बदला जा सकता है, परंतु बहुत मुश्किल है। इससे भला ये है कि हम अपने स्वभाव को ही भगवान की सेवा में लगा दें, बस जिसकी जैसी वृत्ति हो वो भगवान की सेवा में लग जाए। जैसे किसी को संगीत की रुचि है तो संगीत में लग पड़ो, भगवान का गुणगान करो संगीतमय ढंग से। किसी को चित्र बनाने की इच्छा है तो भगवान के चित्र बनाओ। किसी को श्री विग्रह की सेवा करनी है, रसोई करना है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, तो जो जैसी अपनी अपनी इच्छा होती है अपने स्वभाव के अनुसार वैसे कार्य हम करें, लेकिन भगवान से, भगवान की भक्ति से जोड़ के करें। इस तरह से जो हमारे स्वभाव में जितने भी नकारात्मक वृत्तियां हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज, वो नष्ट हो जाएंगी, और जो सकारात्मक, जो भक्ति के अनुकूल जो वृत्तियां हैं उनकी वृद्धि होगी, ठीक है? ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सब आप स्वस्थ हैं वहां पर। मुझे पता नहीं कोरोना वायरस की समस्या कैसी है आपकी जगह, आपके स्थान में, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहिए और सावधानी रखिए, और साथ साथ बड़े उत्साह से अपने भक्ति को आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।